أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آخر آج وہ مبارک اور مبارک دن آ گیا جس کی ایک مدت سے انتظار تھی. یہ وہ جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں اور یہ وہ جمعہ ہے جس کے سبھی منتظر رہتے ہیں, وہ بھی جو 52 ہفتے باقاعدہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ بھی جو سال میں صرف ایک جمعہ پڑھتے ہیں یعنی وداع کا جمعہ. وہ لوگ بھی اس جمعے کے منتظر رہتے ہیں جو 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں, اور وہ بھی اس جمعے کے منتظر رہتے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. پھر وہ بھی اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں جن کی راتیں پہلے ہی خدا کے ذکر کے ساتھ زندہ ہو چکی ہوتی ہیں, جو تہجد کے عادی ہوتے ہیں اور تمام سال اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اس کی رحمتیں طلب کرتے ہیں, اس سے مغفرتیں مانگتے ہیں, اور سارے سال کی عبادتوں کے باوجود پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تہی دامن ہیں بے حقیقت ہیں, انہیں کوئی بھی نیکی کی توفیق نہیں ملی, وہ بھی اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں, اور وہ بھی جنہیں قسمت اور مقدر کے ساتھ کبھی تہجد کی توفیق ملتی ہے. بس یہ وہ مبارک دن ہے جس کی بہت سی آنکھیں منتظر تھیں, بہت سے دن دل جس کے لیے دھڑک رہے تھے اس امید پر, محض اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس مبارک دن میں کوئی ایسی مبارک گھڑی میسر آ جائے کہ ہماری تمام عمر کی کوتاہیاں بخشی جائیں, تمام غفلتوں سے درگزر فرمایا جائے اور آئندہ کے لیے ہماری زندگی سنور جائے. اس پہلو سے وہ سب بھی جن کو پہلے عبادت کی کسی قسم کی توفیق بھی نہیں ملی ہرگز تحقیر کے لائق نہیں ہیں, اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا یہ جمعہ رد کر دیا جائے گا. اللہ کی بخشش کی امید لے کر جو دل زندہ رہے, خدا کی رحمت کی ایک جھلک کے لیے جو آنکھ انتظار کرتی رہے, اس دل کو مردود دل اور اس آنکھ کو نامراد آنکھ نہیں قرار دیا جا سکتا. عین ممکن ہے کہ اللہ ایسے دلوں پر بھی آج رحم نازل فرمائے جو اس سے پہلے اللہ کے ذکر سے معطر نہیں تھے. عین ممکن ہے کہ اللہ ان پر بھی فضل فرمائے جن کو اس سے پہلے عبادت کا ذوق نہیں تھا, اور اس جمعے سے وہ ایک نیا وجود لے کر باہر نکلیں. بس وہ لوگ جن کو نیکی کی توفیق ملی, ان کا یہ تو فرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جن کو نیکی کی توفیق نہیں ملی, لیکن یہ حق نہیں ہے کہ ان کو نفرت اور حقارت کی آنکھ سے دیکھیں. نیکی کا مضمون ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مضمون ہے, اور ہر وقت انسان ایک خطرے کے مقام پر رہتا ہے. یہ ویسی ہی بات ہے جیسے بلندی باوجود اس کے کہ بہت ہی مطلوب چیز ہے انسان کو, بلندی کی تمنا ہر دل میں پائی جاتی ہے, لیکن جتنا زیادہ بلند ہو اتنا ہی زیادہ اس کے لیے خطرات بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ایک قدم کی ٹھوکر اسے گراتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی ساری عمر کی کوششیں نہ صرف ناکام کر دیتی ہے بلکہ وہ ساری رفتیں ہلاکت کا موجب بنتی ہیں, اور جتنی بڑی رفت نصیب ہو اتنی بڑی ہلاکت نصیب ہوتی ہے. اس لیے نیکی میں کوئی مقام محفوظ ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ اللہ سے امن میں آ جائیں. مقام محفوظ یہ تو ضرور ہے کہ غیروں سے امن میں آ جاتے ہیں, غیر اللہ سے امن میں آ جاتے ہیں, اور لا خوف ان کا مقام حاصل کر لیتے ہیں جہاں اللہ کے سوا اور کوئی خوف نہیں رہتا. لیکن اگر کوئی بدقسمتی سے کم فہمی سے یہ سمجھنے لگے کہ میں خدا کی طرف سے بھی امن میں آ گیا ہوں اور میری کوئی گستاخی ایسی نہیں ہوگی جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے, جسے درگزر نہ فرمائے, اور گویا میں حق رکھتا ہوں خدا کی بخشش کا, ایسا انسان مردود ہو جاتا ہے, اور خواہ کتنے بڑے بلند مقام پر فائز ہو اتنے ہی زیادہ اس کا تنزل خطرناک ہوتا ہے اور عبرتناک ہوتا ہے. بس تکبر کی آنکھ خواہ نیکی کی ہو وہ بہت ہی خطرناک آنکھ ہے. اپنے کمزور بھائیوں پر رحم کی نگاہ ڈالیں, ان کے لیے بخشش کی دعا کریں, ان ملائکہ میں شامل ہو جائیں جو بندوں کے لیے, خدا کے بندوں کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں اور مغفرت مانگتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ پکڑیں کہ آپ سے بلند تر تو نیکی کا مقام کسی کو حاصل نہیں تھا, لیکن آپ سے زیادہ رحمت اور شفقت علی الناس کسی نے اور نے نہیں دکھائی. کسی کمزور سے کمزور انسان سے بھی آپ نے تمرد کی راہ اختیار نہیں فرمائی, تکبر کا طریق اختیار نہیں کیا, بلکہ جھک کر ملتے تھے ہر ایک سے, ہر ایک کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے تھے, ہر ایک کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے تھے, محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اگر یہ نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ گناہگار انسان حضور اکرم کی صحبت میں آ کر وہ فیض پا جاتے جو انہوں نے پایا. इतना मुकद्दस वजूद गुनाहगारों को इर्द गिर्द लपेट कर समेट कर उनको पाक करता रहा और हमेशा रहम और शफकत की नजर से उनको पाक किया है, गुस्से और नफरत की नजर से पाक नहीं किया। बस आज का दिन मुबारक है उन नेकी करने वालों के लिए जो आज अपनी नेकियां अपने भाइयों में जारी करने की सही करेंगे और ये खुदा से दुआ करेंगे, ऐ खुदा हमें अपनी नेकी का कोई जोम नहीं है, हम तेरे इस पैगाम को खूब समझते हैं कि ला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका, कि ऐ मेरे बंदो अपने आप का तज़किया ना किया करो, ये लगवा आदत छोड़ दो, ये बेकार मशगला तरक कर दो कि अपनी नेकियों के गुण गाने लगो और ये समझने लगो कि तुम बहुत पाक हो। हुवा आलमु बिमन इत्तका, सिर्फ खुदा जानता है कि कौन सच्चे मानों में पाक और मुत्तकी है, उसके सिवा किसी को कोई इल्म नहीं। बस इस इज्ज के साथ खुदा के हजूर हाजिर हों जो बंदे और ये अर्ज करें कि ऐ खुदा हमें कुछ इल्म नहीं कि हमने क्या हासिल किया, क्या खोया और क्या पाया, तू जानता है, लेकिन हमें बज़ाहिर कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनको वो तौफीक नहीं मिली जो तेरी रहमत ने हमें अता फरमाई। बस हम आज तेरे हजूर ये दुआ करते हैं कि उन्हें भी नेकियों की तौफीक अता फरमा, उनके कदम भी हमारे साथ मिला दे ताकि अहमदियत को और इस्लाम को एक अजीम शान नेकी की कुव्वत हासिल हो, हम में से कमजोर भी तवानाई पा जाएं और आगे बढ़ें, हम में से सुस्त रफ्तार तेज रौ हो जाएं और काफिला पूरी शान और पूरी कुव्वत के साथ तेरे हुजूर झुकता हुआ तेरी रहमत को सजदे करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। ऐ खुदा हमारी नेकियों का फैज इनको भी अता कर जो हमारे पास बैठे हैं, अगर ये नेकियां तेरे हुजूर मकबूल हैं और कुछ नहीं तो ये इज्ज़ ही कबूल कर ले, इन गुनाहगारों के तो फैल ही हमें बख्श दे जिनके लिए हमारी रहमत की दुआएं उठ रही हैं आज, इनकी खातिर ही हमारी बख्शिश का सामान फरमा दे जो बज़ाहिर आंख हमसे कम हैं लेकिन हम इन्हें अपने से कमतर नहीं समझ रहे, हम नहीं जानते कि इनमें से कौन है जिसे तू ज्यादा प्यार करता है। बस ऐ खुदा इस इज्ज़ को ही कबूल फरमा और इन गुनाहगारों के तो फैल ही हम बज़ाहिर नेक बंदों को बख्श दे, इस इज्ज के साथ जो आज इस जुमे में दाखिल होंगे और इस इज्ज के साथ जो इस जुमे से निकलेंगे, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह की रहमत उनको रद्द नहीं फरमाएगी, उनका फैज उनके भाइयों को पहुंचेगा और उनके भाइयों का फैज उनको पहुंचेगा और ये जुमा हकीकत में वो मुंतजर जुमा बन जाएगा जिसकी बरकतों की आपको इंतजार थी। कमजोरों से भी मैं ये कहता हूं जिनको इबादत की तौफीक नहीं, जिनको पहले जुमे की अजमत का एहसास नहीं था कि ये जुमा जो आया है ये तो आपको मुतारिफ कराने आया है अल्लाह से, इसलिए नहीं आया कि एक दिन आपका हाथ पकड़े और फिर आपको छोड़ दे, ये तो इसलिए आया है कि आपको भी बताए कि खुदा की मोहब्बत की मिठास होती क्या है, ये तो इसलिए आया है कि आपको भी सबक दे कि तुम क्यों महरूम होते हो अल्लाह की बरकतों और उसकी रहमतों से, देखो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे शहर में बसने वाले कितने और हैं जिन्होंने इस महीने की जाहिरी सख्तियों को खुशी से कबूल किया, जब तुम खौफजदा थे कि ये महीना आएगा, ये इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह की राह में सख्तियां उठाने की हमें तौफीक मिले, जब तुम रोजों से दामन बचा रहे थे और डरते थे इस बात से कि खुदा की राह में तुम्हें तकलीफ पहुंचे, ये बेखौफ और बेधड़क ऐसी हालतों में भी रोजे पर तैयार हो जाते थे कि इनकी आंख नहीं खुलती थी और सुबह खाने की तौफीक नहीं मिलती थी, कुछ पीने की तौफीक नहीं मिलती थी, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए इन्होंने अपनी बीमारियां छुपाई, इन्होंने अपनी कमजोरियों को ढांपा और जिस तरह भी इनको तौफीक मिली अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश करने लगे। तो ये जुमा उनको ये बताता है कि देखो ये भी तो किस शान और कामयाबी के साथ इस महीने से निकले हैं अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए और कमाते हुए, तुम खाम खा बदजनी करते रहे अपने रब पर, खाम खा एक मामूली अदना से खौफ की वजह से तुम महरूम चले जा रहे हो। ये जुमा उनको बताता है कि देखो अब एक साल के बाद मैं फिर आऊंगा लेकिन ऐसी हालत में आऊं कि तुम्हें बदली हुई कैफियत में देखूं, ऐसी हालत में आऊं कि तुम खुदा के इबादत गुजार बंदे बन चुके हो जब मैं दोबारा तुम्हें मिलने के लिए आऊं, ऐसी हालत में आऊं कि तुम मेरे मुंतजिर हो और मैं तुम्हारा मुंतजिर हूं, कि कब तुम मुझे मिलो तो मैं बरकतों से तुम्हारे दामन भर दूं। ये जुमा कमजोरों के लिए ये पैगाम लेके आता है, उनको बताता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। एक लम्हे में भी ऐसी कैफियतें पैदा हो जाती हैं कि इंसान की सारी जिंदगियों की कीमत से बढ़कर वह लम्हा अजीज हो जाता है। इसलिए उन कमजोरों को अपने लिए ये दुआ करनी चाहिए और खुदा की तरफ से इस जुमे के पैगाम को समझना चाहिए। हकीकत यह है कि ऐसे लोग थे जिनको परेशानी थी और बेचैनी थी कि रमज़ान करीब आ रहा है, मुसीबतें करीब आ रही हैं, माहौल में खुश्की पैदा हो जाएगी, रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्राम खुश्क हो जाएंगे, गप्पे मारने के वक्त नहीं रहेंगे, आज़ादी से खाने पीने के वक्त नहीं रहेंगे, सैरों के वक्त नहीं रहेंगे, किस तरह बाहर जाएंगे सफ़र पे, भूखे और प्यासे बसों में सफ़र करेंगे। बड़े खौफ की हालत में वो मुंतज़िर थे इस रमज़ान के, और खौफ की हालत में उनका वक्त गुजरा। लेकिन जुमतुल विदा उनको बता रहा है कि देखो मैं तो आया भी और चला भी गया, ये महीना यूं ही खाम खा तुम्हारे ऊपर खौफ के साए लहराता हुआ निकल गया, और देखो कितनी तेजी से निकल गया है। काश तुम डरते डरते अल्लाह की राह में डरते हुए वक्त गुजारते बनिस्बत इसके कि दुनिया के लिए डरते हुए वक्त गुजारा। काश तुम खुदा के खौफ में ये वक्त सर्फ करते और खुदा से अर्ज करते कि ए खुदा तेरी खातिर हम मुश्किलें बर्दाश्त करने के लिए आमादा हुए हैं, हम कमजोर हैं, हमारे दिलों में ताकत नहीं है, हमें नेकी की लज्जत से आशनाई नहीं है, हम गुनाहों की तरफ झुकते हैं खुद तभी जोश के साथ, और नेकियों की तरफ माइल होने के लिए हमें मुश्किल पेश आती है, बागें मोड़नी पड़ती हैं हमारी लोगों को नेकियों की तरफ, तो ए खुदा तू हम पर रहम फरमा, तू ही हमारे दिल बदल दे, तू ही हमारे लिए नेकियों को आसान कर दे और नेकियों की लज्जत बख्श। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस रमजान को इस तरह कमाया कि रातों को उठकर खुदा के हजूर गिरिया उजारी की और सजदागाहों को आंसू से तर कर दिया और उनके शोर और गोगे की आवाज बुलंद हुई, आहो बुका की आवाज बुलंद हुई खुदा की राह में, और बाज़ दफा इस शिद्दत के साथ हुई कि तमाम माहौल तक वो आवाज पहुंची। अभी चंद दिन पहले एक रात मेरी छोटी बच्ची घबरा कर मुझसे पूछने लगी कि अब्बा ये क्या हो गया है, इस कदर रोने की आवाजें आ रही हैं, ये क्या क्यामत टूटी है। लफ्ज क्यामत तो उसने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन चेहरे पर ऐसा खौफ था कि खुदा जाने क्या क्यामत टूट पड़ी है कि ये इस कदर लगता है सारा रव्वा रो रहा है। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटी अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही, ये खुदा ताला के बंदे हैं जो अपनी गिरिया उजारी के साथ उसके अर्श को हिला देंगे, तुम्हें जिस कुव्वत के साथ ये आवाज जिस जोर के साथ ये आवाज सुनाई दे रही है उससे बहुत ज्यादा जोर के साथ आसमान के मलकूती वजूदों को यह आवाज सुनाई दे रही है, उससे बहुत ज्यादा अजमत और शिद्दत के साथ अल्लाह की रहमत को यह आवाज सुनाई दे रही है। इसलिए ये तो इनकलाब के इंतजाम है, रूहानी इनकलाब के, तुम घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हें बाहर ले जाकर दिखाता हूं ये कैसी आवाजें हैं। वो बाहर मेरे साथ निकली और अजीब रूहानी कैफियत उसके मुंह पर तारी हो गई, उसने कहा अब्बा ये अल्लाह मियां के सामने रो रहे हैं, मैंने कहा सब अल्लाह के लिए रो रहे हैं। ऐसी लज्जतें बख्श गया है रमजान उन रोने वालों को कि बाहर वाले उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो जिन्होंने खुश्क दिल के साथ, खुश्क निगाहों के साथ, दुनिया के खौफों के साथ ये वक्त गुजारा है, उनको क्या पता कि ये रमजान कैसी कैसी बरकतें लेकर आया और कैसी लज्जतें लेकर आया, ऐसी रूहानी कैफियतें पीछे छोड़ गया है कि वो सारा साल इंसानी वजूद को लज्जत से भरा रखेंगे। इसलिए उनके लिए ये विदा का जुमा एक बहुत ही दर्दनाक जुमा बन जाता है। कई उनमें से सोचते होंगे कि हम बीमार हैं, खुदा जाने अगला साल हम पर ऐसा आता है कि नहीं कि दोबारा हम अल्लाह ताला से ये बरकतें हासिल कर सकें, दोबारा खुदा के हुजूर गिरिया उजारी कर सकें। कुछ बूढ़े हैं उनको इल्म नहीं, लेकिन जवानों को भी कब इल्म है, अल्लाह की तकदीर का तो किसी को इल्म नहीं, कौन किस जमीन पर किस वक्त उठाया जाए सवाए खुदा के कोई नहीं जानता। इसलिए हर वो शख्स जो नेकी का तालिब है, जो अल्लाह के हुजूर गिरिया उजारी के साथ हाजिर होने की तमन्ना रखता है, उसके लिए ये जुमा एक दर्दनाक विदा का जुमा है। लेकिन मैं उनको भी बताता हूं कि जो सच्चे दिल से और सच्चे प्यार के साथ अल्लाह की रहमतों के मुतलाशी होते हैं और पाक लम्हात को गहरे दुख के साथ रुखसत करते हैं, जिनका हिज्र सबसे ज्यादा नेकियों का हिज्र होता है, बदियों के लिए हिज्र महसूस नहीं करते, उनको अल्लाह ताला एक वसले दवाम अता किया करता है, उनको अल्लाह ताला एक ऐसी रहमत अता फरमाता है जो हमेशा उनके साथ रहती है और उनसे जुदाई नहीं इख्तियार करती। इसलिए वो आज के बाद जितनी रातें भी उठेंगे वो अल्लाह की रहमत को अपने करीब ही पाएंगे। ये जुमा रहमतें देने के लिए आया है, लेकिन रहमतें ले जाने के लिए नहीं आया। ये बरकतें अता करने तो आया है, लेकिन बरकतें लूटने नहीं आया। इसलिए बेफिक्र और बेगम होकर इस जुमे से गुजरें। उनका हर जुमा जुमतुल विदा की तरह मुबारक हो जाएगा, उनकी हर रात शब बरात बन जाएगी, अगर वो इसी तरह मोहब्बत और इखलास और प्यार के साथ अपने रब के हुजूर उठते रहें और दुआएं करते रहें। मैंने आज के मौजू के लिए लैलतुल कदर की आयात का इंतखाब किया था, और उनका गहरा ताल्लुक जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बाजूब से है, इस मजमून को बयान करना था। तबर्रकन मैंने ये आयात तलावत तो कर दी, लेकिन मुझे पहले ही एहसास था कि ये वक्त इतना थोड़ा है कि नामुमकिन है कि इन आयात की तफसीर का हक अदा किया जा सके। ये हक अदा करना तो एक इंसानी मुहावरा है, अमरे वाकया तो ये है कि वक्त थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इंसान इरफान के किसी भी मुकाम पर पहुंचा हो, कुरान करीम की एक आयत की तफसीर का भी हक अदा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो मैंने इसे आम इंसानी मुहावरे में इस्तेमाल किया है, हक अदा करना। मुराद ये है कि कुछ ना कुछ उसके मुतल्लिक इतना तो कह सके इंसान कि सुनने वालों को कुछ समझ आ जाए कि ये क्या बात हो रही है। उसके लिए तो एक जुमा भी काफ़ी नहीं, दो तीन जुमे भी थोड़े महसूस होते हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम और बुनियादी नुक्ता मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि लैलतुल कद्र में, इन्ना अनजलनाहु फी लैलतुल कद्र में हो को, यानी इस जमीर को जो आज़ाद छोड़ दिया गया, और इन्ना अनजलनल कुरान फी लैलतुल कद्र नहीं फरमाया। ये कुरान करीम का खास उसलूब है, और जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम दोनों की बातें यकजा करना चाहता है, वहां हमेशा कुरान करीम यही उसलूब इख्तियार फरमाता है। जैसा फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। इसमें हू की जमीर किताब की तरफ भी चली जाती है और अब्द की तरफ भी चली जाती है, और यह मुराद नहीं है कि या अब्द की तरफ जाएगी या किताब की तरफ, बल्कि मुराद यह है इस आजादी से कि दोनों की तरफ जाएगी और बराबर चिस्पा होगी। बस लैलतुल कद्र में भी अनजलनाहु से एक मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गमों और दुखों की रात जिसमें एक ऐसा वजूद बाबरकत नाजिल हुआ जिसने गमों और दुखों की रातों को रहमतों और बरकतों की रात में तब्दील कर दिया, ऐसा हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा किया कि अंधेरे रोशनियों में बदलने लगे, मुसीबतें और खतरात सलामती में तब्दील होने लगे, और ये सारे वाकयात अल्लाह के हुक्म से हो रहे थे। एक जर्रा भी इसमें इस वजूद की अपनी जाती ख्वाहिश का नहीं था, मुसलसल अल्लाह की रहमत अल्लाह के हुक्मों से नाजिल हो रही थी, खुदा की सलामती उसकी तरफ से आ रही थी। ये जरिया बन गया ये सूरज जो रोशनी का सूरज है। बस लैलतुल कदर के मुतल्लिक अगरचे हम नहीं जानते कि इस महीने की लैलतुल कदर आकर गुजर भी चुकी है या आने वाली है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि क्या हर एक को एक ही रात में लैलतुल कदर नसीब होती है या बाज़ औक़ात बाज़ों को मुख्तलिफ रातों में लैलतुल कदर नसीब हो जाती है। ये मज़मून बड़ा तहकीक तलब है, और जितनी तहकीक भी की जाए कती जवाब फिर भी नहीं मिलता, इसलिए कोशिश आखिर वक्त तक रहती है। और इस आज़ादी में भी एक अजीब लुत्फ है, गैर मुअय्यन रात की तलाश में जो लुत्फ है वो मुअय्यन रात की तलाश में नहीं हो सकता। एक रात 10 रातों में तब्दील हो गई है अपनी बरकतों के लिहाज से। वो जिनको तलाश है उनको यह भी पता नहीं कि शायद गुजरी चुकी हो, इसलिए गुजरने के बाद की रातें भी उनकी अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात वो बाद में आने वाली रात भी उनके लिए लैलतुल कदर बन जाती है। इसलिए लैलतुल कदर का मज़मून तो अभी जारी है। आज के जुमे को ये एक आम बरकतों के अलावा बरकत भी मिली हुई है कि ये दो ऐसे दिनों के दरमियान है जिनकी रातें लोगों की आम तवक्कुआत के मुताबिक और रवायात के मुताबिक लैलतुल कदर होने का ज्यादा इम्कान रखती हैं, यानी 25 और 27 की रातें, और 26 एन बीच में वाकया है। इसलिए इस जुमे की बरकतें उन दोनों रातों से भी शामिल हो जाएंगी जो इनके दाएं बाएं खड़ी हैं। तो दुआओं का वक्त अभी गुजर कर खत्म नहीं हुआ। वैसे तो दुआओं के वक्त कभी भी खत्म नहीं होते, सारी जिंदगी इंसान दुआओं की के तुफैल ही जिंदा रहता है हकीकत में। और एक लम्हा के लिए भी अगर दुआ का राबता कट जाए इंसान से तो वो ऐसा जनीन बन जाता है जिसका मां से राबता कट गया हो, जिससे जिसकी खुदा फिर परवाह नहीं करता। कुल मा याबाओ बेकुम रब्बी लौला दुआओकुम में यही मजमून बयान फरमाया गया है। इसलिए इसमें तो शक नहीं कि दुआ तो एक जारी और सारी एक जिंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा है। इसे इंसानी जिंदगी में ना पानी का मुकाम है ना खुराक का मुकाम है, इसे हवा का मुकाम हासिल है जो हर वक्त इंसान के लिए जिंदगी के लिए जरूरी है। बस रूहानी जिंदगी में दुआ को तो ये मुकाम हासिल है, लेकिन बास खास दुआओं के वक्त होते हैं जबकि दुआ हर चीज बन जाती है, गजा भी हो जाती है, पानी भी हो जाती है, ओढ़ना बिछोना भी हो जाती है, मादी दुनिया से इंसान को आजाद भी कर देती है। हकीकत में दुआ ऐसे ऐसे रूप ढाल लेती है, ऐसी शक्लें इख्तियार कर लेती है कि कभी जाहिरी रिज्क बन के भी अल्लाह के बंदों पर नाजिल होती है। पर ऐसे वाकयात हैं कि जब दुआ ने रोटी की शक्ल इख्तियार कर ली, जब दुआ ने पानी की शक्ल इख्तियार कर ली, जब दुआ ने फल की शक्ल इख्तियार कर ली। हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने बचपन का एक वाकया बयान फरमाया करते थे कि एक दफा सैर के लिए बाग में जा रहे थे तो एक ऐसे फलदार दरख्त पर नजर पड़ी जिसका वक्त नहीं था और वो शाखें उसकी सूखी हुई थी। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ टहल रहे थे तो बचपन की जिद के तौर पर आपने फरमाया कि अब्बा मुझे ये फल दें, और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने शाख पर हाथ मारा और वो फल ताजा हजरत खलीफतुल मसीह सानी जो बच्चे थे उस वक्त उनको दे दिया, अता फरमा दिया। हजरत मुस्लिम मऊद बयान किया करते थे कि हमें पता नहीं मुझे कि वो कैसा वाकया हुआ था, किस तरह आया, लेकिन ये अमरे वाकया है। तो बाज़ दफा मोमिन बंदों की हरकत भी दुआ बन जाती है, खास मुकाम होते हैं दुआ करने वाले को अल्लाह के हजूर। वइन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्नु मआब, खुदा ताला बाज़ बंदों के मुतालिक फरमाता है कि उनका हमारे यहां एक खास मुकाम है, वह हुस्नु मआब, गुर्बत का एक खास मुकाम है और हुस्न का एक खास मुकाम हासिल है। तो दुआ का मजमून तो बहुत ही लंबा और वसी है और दुआ करने वालों के हालात भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन यह अमरे वाकया है कि दुआ करने वाला खा अदना हो खा आला हो, अल्लाह ताला की तरफ से उसको तो में जरूर मिलते हैं। हैरत अंगेज बाज दफा खुदा करिश्मे दिखाता है अपने वजूद के, अपनी रहमत के, छोटे छोटे लुकमे भी दे देता है, बड़े बड़े भी लुकमे दे देता है, खारिक आदत मौजे भी दिखाता है, दस्तूर को तब्दील करने के मौजे भी दिखाता है और दस्तूर को किसी का गुलाम बना देने के मौजे भी दिखाता है, सारी कायनात को किसी वजूद के लिए मुसख्खर करने के मौजे भी दिखाता है। लेकिन यह नहीं कह सकते कि यह इतना कमजोर है, इतना जलील और रुसवा है कि इसकी दुआ कबूल नहीं होती। अजीब शान है अल्लाह की, कमजोर से कमजोर बंदे की भी वो बाज़ इस शान से दुआ सुनता है कि अगर उसमें शर्म और हया का मादा हो तो हमेशा के लिए खुदा के हजूर भेज जाए। ऐसे बंदों को भी सुनता है जिनके मुतलिक जानता है और गवाही देता है कि जब हम उनको गम से निजात देंगे तो फिर शिर्क करेंगे। आज खालिसतन मुझे बुला रहे हैं और मुझे मेरी मदद के लिए पुकार रहे हैं, जानता हूं कि जब मैं इनको निजात बख्शूंगा तो फिर ये बुतों के सामने झुकेंगे।
तब भी मेरी रहमत इतनी वसी है कि मैं इनको बख्शता हूं, इनकी दुआओं को कबूल करता हूं, गम से निजात बख्शता हूं। तो दुआ का मजमून तो जारी वो सारी है, लेकिन जैसे कि बाज दुआएं खास मुकाम रखती हैं, बाज दुआ करने वाले खास मुकाम रखते हैं, बाज अय्याम भी खास मुकाम रखते हैं, बाज दिन भी और बाज रातें भी। और लैलतुल कदर की रात, मैं सारे मफाहीम को तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक उर्फ आम में जो मफहूम है कि वाकईतन एक रात हो, ऐसी रात भी आती है। और ऐसी रात आती है और जिसको नसीब हो जाए उसका घर बरकतों से भर जाती है, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी संवार जाती है। इस रात को हासिल करने का जरिया क्या है, वो मैं तवज्जो आपको दिलाना चाहता हूं, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो सूरज है, ये सिराज मुनीरा है, जिसके जरिए लैलतुल कदर वजूद में आई थी। खा ये दायमी लैलतुल कदर इस्लाम की करार दे लें, या खास जमाने की लैलतुल कदर कह लें, या जमाने नबी के लैलतुल कदर शुमार करें, या इंसानी जिंदगी की एक लैलतुल कदर, या एक रात शुमार कर लें, या एक रात के चंद लम्हे, जो मफहूम भी इसका है, ये बरकत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद के जरिए नाजिल हुई, इस बात में कोई शक नहीं। इसलिए इसकी बरकतें हासिल करने के लिए दुरूद बहुत कसरत से पढ़ना पड़ेगा, और मोहब्बत के साथ, जाती वाबस्तगी के साथ इस कसरत से दुरूद पढ़ें कि वो नूर मुस्तफ़वी जो अंधेरी रातों को रोशन किया करता है, वो जो अजियतनाक और कर्बनाक लम्हों को रहमत और सलामती में तब्दील किया करता है, वो नूर आपके वजूद पर नाजिल होने लग जाए, और इसी का नाम लैलतुल कदर है। अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात किसी को नसीब हो जाए और उसके वजूद में मोहब्बत के जरिए दाखिल हो जाए और उसके अंग अंग में समा जाए, उसकी फितरत बन जाए, उसकी आदतें हो जाए, उसकी खसलतों में तब्दील हो जाए, तो इससे बेहतर लैलतुल कदर और कोई लैलतुल कदर नहीं है। ये वो लैलतुल कदर है कि हजार महीने उसके पांव चूमें और चाटें और उसके सामने गिरियाजारी करें और सजदे करें, तब भी ये रात उन सारे महीनों पर हावी और भारी और ज्यादा बरकतों वाली होगी। बस ये कोशिश करें आज कि जो बकिया दिन है, आज भी और बकिया दिनों में भी, आज की रात भी और बकिया रातों में भी, कि इस कसरत के साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें कि वो सिराजे मुनीर जो इस कायनात की रूहानी दुनिया का सिराजे मुनीर है, वो आपके कायनात वजूद का भी सिराजे मुनीर बन जाए और आपकी जात में चमकने लगे, आपके दिल में दाखिल हो जाए, आपकी सारी जिंदगी को मुनव्वर कर दे। और अगर जमात अहमदिया को ये लैलतुल कदर नसीब हो जाए तो इस लैलतुल कदर की बरकतों को कोई दुनिया में छीन नहीं सकता, नामुमकिन है। ये लैलतुल कदर उस मतलाल फजर में तब्दील हो जाया करती है कि अचानक एक अजीम शान इनकलाब बरपा होता है, जिसे रात कहते थे उसे दिन कहने लगते हैं, जिसे अंधेरे समझा करते थे वो रोशनी बन जाती है और मतलाल फजर हो जाता है। इस यकीन के साथ फिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आपके वजूद के साथ और आपकी बरकतों के साथ इंसान जिंदा रहता है कि फिर कभी उसकी जिंदगी में कोई रात नहीं आती। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
دعا کا ذکر چل رہا تھا تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر آپ پر اس لیے بھی واجب ہے کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ سے یہ آپ کو توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں, بارش ہو جو اس کے فضلوں اور رحمتوں کی بارش ہو جو موسموں کو اس طرح تبدیل کرتی ہے کہ ٹھنڈی اور تسکین بخش ہواؤں کی شکل اختیار کر لیتی ہے, کیفیت بدل دیتی ہے. وہ دعا مانگیں اپنے رب سے, اور جماعت نے وہ دعا کی اور اللہ نے اس شان کے ساتھ وہ قبول کی ہے کہ سارے عرصے جب ایسی ہوا کے جھونکے ملتے تھے تو سانس اور یہ ہوائیں رحمت کی مجسم حمد باری بن کر ایک دوسرے کے گلے ملا کرتے تھے. حیرت ہوتی تھی اللہ کی رحمت پر, اس کی بخشش پر, اس کی عطا پر کہ اپنے عاجز بندوں یعنی جماعت احمدیہ سے منسلک بندوں کی کس شان کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے. یہ دراصل ایک پیغام تھا, پیغام یہ تھا کہ اصل دعائیں جو تم نے کرنی ہیں وہ دعائیں بھی میں تمہاری اسی شان سے قبول کروں گا جیسے ایک ظاہری چھوٹی سی علامت ہے جو میں پوری کر رہا ہوں. اس لیے میرے لیے تو یہ بارشیں اور یہ رحمتیں ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام بن کر آئی تھی. سارا ہفتہ ایک عجیب کیفیت میں گزرا کہ خدا تعالیٰ نے تو ادھر دعا نکلی اور ادھر یہ پیغام دے دیا کہ میں تمہاری ساری دعائیں سن رہا ہوں اور علامت کے طور پر یہ ظاہری دعا بھی تمہاری قبول کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کسی کو مجھ پر بدظن نہیں نہ ہو. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ہم نے دعائیں کی وہ بھی مقبول ہوئیں, جو اسلام کی فتح کی اور اس کی عظمت کے لیے ہم نے گریہ وزاری خدا کے حضور کی, جو آنسو بہائے وہ بھی مقبول ہوئے. اور وہی آنسو ہیں دراصل جو لیلۃ القدر کا ترشح ہوا کرتے ہیں. یہ جو لیلۃ القدر کے ساتھ آپ نے ترشح کی باتیں سنی ہیں, روحانی دنیا میں بھی ایک ترشح ہوتا ہے. یہ بندے کے آنسو ہیں جو لیلۃ القدر کا ترشح بن جایا کرتے ہیں. تو اس لیے بقیہ وقت بھی خدا جہاں دعائیں مزید کریں وہاں خدا کا شکر بھی بہت کریں, یہ عرض کریں رو دو کر اور گریہ وزاری اور منت اور سماجت سے اللہ کی رحمت کے قدم پکڑ کے لپٹ کر اس سے کہ اے خدا ہم نہیں جانتے یہ کیا تھا لیکن ہمارے دلوں کو یہ یقین ہے کہ یہ تیری رحمت کا نشان تھا, اس لیے ہمیں مایوس نہ کرنا اور اس رحمت کے نشان کو پہلی دعاؤں پر بھی حاوی کر دے اور اگلی دعاؤں پر بھی حاوی فرما دے. ہم نہیں جانتے ہم میں سے کس کی سنی گئی مگر یہ جانتے ہیں کہ تیرے عاجز بندوں کی سنی گئی ہے, اس لیے تیری یہی عاجز بندے جو باقی دعائیں کرتے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.